गाथा, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अंजना वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी नंदन पार्क। इस बार जोर की ठंड पड़ रही थी और सूरज भी कोहरे के लिहाफ फोड़कर सो गया था। कहां सब सोच रहे थे कि ठंड अब चली गई, समय भी तो उसके जाने का हो गया था, पर अब जाते जाते वे अपना असली चेहरा दिखा रही थी। मेहनतकश लोगों में जवान लोग तो ठीक थे, बूढ़े और बच्चों के लिए मुश्किल हो गई थी। कई बुजुर्ग पेड़ की पीली पत्तियों की तरह चुपचाप खिसक गए तो कई बूढ़े लोगों ने खाट पकड़ ली। इसी ठंड में हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। लगातार दो दिनों से फूही बरसती रही, एक दिन छुट्टी भी तो तापमान नहीं बढ़ा। शंकर की माँ भी ठंड के कारण बीमार पड़ गई, उसका खाना पीना सब छूट गया। जब वे खांसने लगती तो खांसती खांसती बेदम हो जाती। 24 घंटे खाट के पास बोरसी लेकर बैठी रहती क्योंकि उसे लगता था कि ठंडा उसकी हड्डियों में समा गया है, बोरसी ना रहे तो उसकी जान ही निकल जाए। मोहल्ले वालों ने ठंड से निजात पाने के लिए सड़क के किनारे अलाव लगा लिया था। सवेरे शाम वह धुधुआती जल उठती, लकड़ी ना रहती तो टायर कूड़ा कुछ भी डाल दिया जाता, जो आता वह बैठ जाता। शंकर पेंटर था और यही काम करते हुए अपने परिवार की गाड़ी खींच रहा था। खर्च की लगाम पकड़े रहता कि वह नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। हफ्ते भर से वह घर में बैठा हुआ था। मौसम सही रहता तो वह अपने काम पर होता, पर ऐसे मौसम में जब सूरज के दर्शन ना हो काम कौन करवाता। इसी ठंड में एक दिन वह पान गुटखा खरीदने के लिए दुकान तक गया था। दोनों हाथ अपने बगल में दबाए हुए, टोपी के ऊपर मफलर बांधे हुए, ठंड से जैसे लड़ता हुआ। दुकान पर उसकी भेंट संजय से हो गई तो संजय ने चुटकी ली। क्यों शंकर, तू बोल रहा था ना जाड़ा चला गया, ये क्या है? उस दिन जब तू चाची के लिए स्वेटर खरीद रहा था तो मैंने कहा था ना कि अपने बच्चों के लिए भी स्वेटर खरीद दे, तो तू यही कह के टाल गया कि ठंड तो अब चली गई। देख कैसी ठंड घिर आई है, टीवी में बोल रहा था कि तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। देख मैं दुगने जोश के साथ लौट आई है। ये सुनकर शंकर झेपते हुए बोला, आई है तो रहेगी थोड़ी ना, अब कल से ही जाड़ा खत्म होने लगेगा, देख ना। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि संजय मुस्कुराने लगा और उसके साथ साथ दुकानदार भी। गुटके का आदि शंकर कुछ गुटके के पैकेट लेकर चलता बना। पान गुटके की दुकान से बाईं ओर जो सड़क जाती थी उसमें कामगार लोग रहते थे। उसकी दाईं ओर की सड़क पर मध्यम वर्गीय लोगों के मकान थे। उसी कतार में कुछ अपार संपदा से भरे धनाहियों के भी घर थे। बीच में एक पार्क था, जिसे पार्क नहीं मैदान ही कहना चाहिए। वह जमीन पार्क के लिए तो थी, पर अभी तक इस तरह की कोई शुरुआत ना होने से कठोर बनी पसरी हुई थी। उस पर उगी धूप शीत की मार झेलती हुई पीली और सूखी दिखाई देने लगी थी। इस पार्क में चहलकदमी करने वालों की कमी नहीं थी। सवेरे सवेरे सैर या जॉगिंग करने वाले लोग इसका पूरा लाभ उठाते। इसकी खुली हुई हवा में जी भर भर कर सांसें लेते। कई लोग आकर शांति से बैठते तो कई योगा अभ्यास व्यायाम वगैरह करते। इन सबसे अलग कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस हरी भरी जमीन पर कुछ नहीं करते, बल्कि अपनी मेहनत और अपना समय बचाने के लिए अपने कदमों से इसे तिरछा या सीधा नापकर जल्दी से उस पार पहुंच जाते। ले देखा, ये दो मोहल्लों के बीच का एक लौता दुलारा मैदान था। इसी मैदान से सटा मंत्री जी का एक आलीशान बंगला था, जिसके अहाते में उनकी कई गाड़ियां लगी रहती थी। द्वार पर सिक्योरिटी तैनात रहते और ऊंचे फाटक के किनारे पैरवीकारों की रंगी गाड़ियां सजी रहती, जो मंत्री जी के बंगले की शान बढ़ाती। आज कितने दिनों के बाद चमकदार धूप निकली थी और एक वृहद पैरासोल की तरह आसमान में छा गई थी। इसके पसरते ही चारों ओर चहल पहल शुरू हो गई। कई दिनों से कमरे और घरों में दुबके हुए लोग बाहर निकल आए। मेहनत कशों की गली में जवान औरतें कमर में पल्लू खोसकर अपने बच्चों के कपड़े और पोतड़े धो धोकर बालकनी में डालने लगीं। सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई। इतने दिनों से शिथिल पड़ा यातायात आज अचानक सक्रिय हो उठा, जिससे सड़कों पर वाहनों का जाम लग गया। शंकर की माँ सूरज की किरणें देखते ही बिछावन से उठकर बाहर छज्जे के नीचे धूप में आकर बैठ गईं। सर्दियों में धूप का पीछा करने की उसकी पुरानी आदत थी। इस तरह की धूप खिसकने के साथ साथ उसकी चटाई भी खिसकती चली जाती थी, तब तक जब तक कि सूरज डूब नहीं जाता। इस शहर में वह शंकर के बुलाने से आई थी, नहीं तो वह नहीं आती। ऐसे बेस्ट की कोठरी में उसका दम घुटने लगता था। 10 बज रहा था और शंकर अभी भी बिस्तर में था। कोई और दिन होता तो उसके हाथों में ब्रश होता और वह उदास दीवारों को रंगीन बनाता हुआ उन्हें हंसाने की कोशिश में लगा होता। आज बिस्तर में धूप की छुअन मिल गई और वह खरमाया हुआ पड़ा हुआ था। इस सर्दी में बहुत दिनों बाद ऐसा सुख मिल रहा था। नहीं तो एक कंबल में करवट बदलते और शरीर को सिकोड़ते हुए रात बीत जाती थी। उसकी बीबी पूजा ने उसे झिझोड़ कर जगाया, उठो ना, कब तक सोए रहोगे? छोड़, सोने दे मुझे, पूजा ने छोड़ दिया। सचमुच कितनी मुश्किल से उसे सोने का समय मिला था। फिर काम शुरू हो जाएगा तो वह ढंग से ना सो पाएगा ना खा पाएगा। शंकर बिस्तर में पड़े पड़े अपनी बंद पलकों से भी इस कमरे के भीतर बाहर फैली रोशनी का जायजा लेता रहा। आज धूप उसकी कोठरी की मटमैली दीवारों को चमकाने के बाद वहीं पैर पसार कर बैठ गई थी। ये एहसास उसके भीतर ऊर्जा भर रहा था। वह आराम से 11 बजे सोकर उठा, जबकि उसकी आंखें स्वतः खुल गईं। उसने उठकर गुटका का एक पाउच मुंह के हवाले किया, स्वेटर पहनकर मफलर बांधते हुए बाहर जाने लगा तो पूजा ने कहा, अरे अरे, उठकर सीधे कहाँ चल दिए? तो क्या यहीं बैठा रहूं? जरा एक चक्कर लगा के आता हूं, कुछ काम धंधे के बारे में पता तो कर लूं। इसके बाद किसी जवाब की आशा किए बिना वह सीधे बाहर चला गया। वह जाएगा और अपने दोस्तों परिचितों से इधर उधर की बातें करेगा। यह एक चक्कर लगाना व्यर्थ नहीं होता था। इस तरह घूमते फिरते वह काम की तलाश करता था। कोई संगी साथी बता ही देता था कि फला जगह उस पेंटर की जरूरत है। ये मोहल्ला ऐसा था कि लोगों के आधे काम तो सड़कों पर ही होते थे। लकड़ियां हैं तो सड़कों पर सूखेंगी, बच्चे हैं तो सड़कों पर खेलेंगे, औरतें बाल झाड़ेंगी तो सड़कों पर बैठकर, बड़ियों और पापड़ की खटिया भी सड़कों के किनारे आधी सड़क घेरती हुई बिछेंगी। एक कोठरी में कितना जीवन समा सकता है। अभी कुछ दूर आगे बढ़ा तो रामबाग वाली चाची दिखाई पड़ी, जो कई दिनों से बीमार चल रही थी। आज उनकी भी खाट बाहर धूप में बिछी थी, जिस पर वह बैठी हुई थी। शंकर ने कहा, पैर लांगू चाची, कैसी हो? पप्पू को देखकर चाची ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कुरा ना सकी। नहीं तो वह मुस्कुराती और आशीर्वादों की झड़ी लगा देती। वह बस इतना बोल सकी, ठीक हूं बेटा, आज ही तो उठकर बैठी हूं, कई दिनों से बीमार थी, बड़ी सेवा करी मेरी बहुओं ने। बेटा तो मुझे दूध रोटी खिलाए बिना काम पर जाता ना था, इन्हीं सबकी सेवा से उठ बैठी हूं। शंकर सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुराया। बात बात पर अपने बेटे और बहुओं की तारीफ करना चाची की पुरानी आदत थी। इतना कहने के बाद वह हांफने लगी और चुप हो गई। शंकर मैदान से होकर गुजरने लगा तो उसने देखा कि आज वहाँ बच्चों का क्रिकेट चल रहा है। मेहनत कश मोहल्ले के सारे बच्चे अपने तन पर पुराना अधुराना सिर्फ कहने भर को गर्म कपड़ा डाले मैदान में डटे हुए थे। उसके दोनों बच्चे मोहित और रोहित भी थे उसी वेशभूषा में। मोहित ने लकड़ी का एक पट्टे का बल्ला बनाया हुआ था और रोहित समेत सभी बाल खिलाड़ियों ने अपना मोर्चा संभाल रखा था। जोश और मस्ती में कोई कमी ना थी। वह देर तक खड़ा देखता रहा। बड़े अच्छे लग रहे थे ये खेलते हुए बच्चे। घर पहुंचा तो देखा माँ की चटाई आगे खिसक आई थी। वह उस पर बैठी धूप सेक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, चल माँ तुझे वहां मैदान में जाकर बिठा दूं, वहां दिन भर धूप सेकना, पूरी देह गर्मा जाएगी। उसकी माँ ने कहा, ना बाबा अभी तो मुझ में एक कदम चलना नहीं जाएगा मुझसे। और तू सवेरे सवेरे उठकर कहाँ चला गया था? वह थोड़ा काम के चक्कर में निकला था माँ। यहाँ पित्ते भर की धूप के लिए चक्कर काट रही है माँ, शंकर ने सोचा। गांव में जब था तो पैसे की कमी जरूर थी, पर धूप हवा पानी और आसमान इफ़रात थे। रोशनी हवा और आसमान का अनंत विस्तार था। तब वह नहीं समझता था कि ये सारी चीज़ें सिमट भी सकती हैं, और अब वह देख रहा था कि इनका सिमटना कैसे होता है। जब भी गांव याद आता, गांव के पेड़ ज़रूर याद आते, वे लीची के बगीचे और उनमें धमा चौकड़ी। लीची की सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ने वाला वही हुआ करता था, और चंद खट्टी इमलियों के लिए इमली के भुता कहे जाने वाले पेड़ों पर भी वही चढ़ता था। एक बार तो उसने लीची की डालियों में छुपकर माँ को खूब रुलाया था। माँ ने स्कूल न जाने के लिए उसे पीटा था। बस वह गुस्सा होकर लीची के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और डालियों में छुपकर बैठा रहा। उधर उसकी माँ उसे घर में आसपास ना देखकर गांव में ढूंढने निकली। गांव के एक एक बच्चे और सयाने से घर घर में झांक झांक कर रास्ते पैरे में रोक रोक कर वह पूछती रही। घंटों भटकने के बाद जब वह ना मिला, कोई सकारात्मक उत्तर भी ना आया, तो उसी पेड़ के नीचे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी, आंचल से आंखें पोंछते हुए। तब शंकर से ना रहा गया। उसने ऊपर से एक लीची तोड़कर माँ के सामने गिराई। माँ ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो वह हंस रहा था। इधर माँ हंसने के बजाय फिर बिगड़ गई और बोली, तूने कितना हैरान किया है मुझे, तुझे समझ में नहीं आया कि मुझ पर क्या बीतेगी, शैतान कहीं का। फिर दो पलों पर ही गुस्सा गायब हो गया और वह कोमल आवाज में बोली, आ उतर आ, अब ना मारूंगी तुझे, आजा बेटा। वह उतरा तो माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया। ऐसे कहीं रूठते हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तू कहीं चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी रे। वह रोने लगी थी। वह अपने हाथों से माँ के आंसू पोंछने लगा। अच्छा चल अब खा ले, अभी तक भूखा है तू, माँ बोली। और तब माँ ने जो अपने हाथों से उसे रोटी खिलाई, तो वह आज तक नहीं भूला उन प्यार भरे कौरों का स्वाद। ऐसे तो अक्सर माँ के हाथों से खाते हुए वह यही सोचता था कि कैसा भी खाना हो, माँ के हाथों से इतना स्वादिष्ट क्यों हो जाता है। एक दिन तो वह पूछ ही बैठा, क्या माँ तुम्हारे हाथों से कोई रस निकलकर खाने में मिल जाता है क्या, तुम्हारे हाथ से खाना इतना स्वादिष्ट क्यों हो जाता है। माँ ने हल्की सी चपत उसके गाल पर लगाते हुए कहा, धत पगले कैसी बातें करता है, और वह हंसने लगी थी। गांव में उसने जितना मौज किया, वह यही सोचता कि आज के जमाने में वे उसके बच्चों को नसीब नहीं होगा, वे जान भी ना पाएंगे कि खुली हवा और खुली धरती में स्वच्छंद विचरने का आनंद क्या होता है। उसने अपने भीतर कितनी शुद्ध हवा और कितनी धूप भरी थी। नदी में नहा नहा कर उसने अपने त्वचा को कितना सींचा था जल से, धूल मिट्टी से भी। काम की तलाश में जब वह इस शहर में आया था तो यही बात उसे सबसे अधिक अखरी थी। एक छोटे से ऐसे बेस्ट के कमरे में रहना और माँ के लिए एक और कमरा लेना, इसी में उसकी आय का अधिकांश निकल जाता था। ऊपर से हर मौसम तबाही। वह सोचता, गांव में प्रकृति जो दुख देती है तो उसका निदान भी उस साथ अपने साथ उपस्थित कर देती है। गर्मी है तो हवा पानी है, जाड़ा है तो धूप और आग है। शहर की सुख सुविधाएं सिर्फ पैसे वालों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं। पहले तो मन बिल्कुल उचाट हो जाता था, पर अब तो उसे इसी मान में जीने की आदत हो गई थी। पर वह नहीं चाहता था कि ये अंधेरा मान उसके बच्चों को मिले। वह तो पिता के निधन के बाद पूरा पढ़ भी नहीं पाया था, परंतु वे अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प ले चुका था। पर कैसे होगा ये सब? उसने सोचा था कि रोहित और मोहित को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, परंतु स्कूल की फीस ही सुनकर पीछे हट गया था। हजारों रुपए महीने के खर्च हो जाएंगे उस पर, जितना बड़ा स्कूल उतना ज्यादा ढीप ढाप। एक बोरी किताबें, बढ़िया यूनिफॉर्म और तरह तरह के तामझाम। ऊपर से समय समय पर अभिभावकों से पैसे निकलवाने के लिए फरमान जारी हो जाएगा। उसका दिल बैठ गया था कि वह यह सब नहीं कर सकेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाए तो उल्टे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, साथ ही दिन का खाना भी मिल जाएगा, सो अलग। अतः उसे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन करवाना पड़ा था। ऐसे भी तो बच्चे पढ़ेंगे ही, चाहे जैसा भी पढ़ें। अब रोज ही मैदान में बच्चों की जमघट लगने लगी थी, पर सूरज की किरणों से सुनहरे बने मैदान में इन बच्चों का खेलना, हंसना और चहकना वहां सैर करने वालों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैदान की गरिमा कहीं भंग हो गई है। रोज की तरह गंधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घूमने के दौरान उन्हें मलिक मिल गए। अपने भारी भरकम 6 फुटे शरीर से टावर की तरह हिलते हुए वे मलिक के पास पहुंचे और हेलो कहकर जाते हुए मलिक को रोका। हेलो मिस्टर मलिक, इधर इस मैदान को देख रहे हैं ना? हाँ, क्या हुआ? क्या आपको लगता नहीं कि मैदान अब कुछ डर्टी हो गया है? पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? हाँ हाँ, राइट, ठीक कहते हैं आप। यही तो मैं सोच रहा था कि इसकी सूरत अब क्यों बदल गई है। कहकर माथे पर बल डालते हुए मलिक ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। आजकल उस गली के लड़के दिन भर मैदान पर कब्जा जमाए रहते हैं, उसी की वजह से गंदगी हो गई है। अपना तो अब इधर आने का मन ही नहीं करता है। ये यंग लोग ही अच्छे हैं जो सीधे जिम जाते हैं, गंधा ने कहा। इस पर मलिक बोले, अब हमारी उम्र तो जिम जाने की है नहीं। ये कहकर मलिक हंसे तो गंधा को भी साथ में हंसना पड़ा। अब मैदान में खेलने वाले बच्चों के चेहरे जहां खिले खिले दिखाई देने लगे, वहीं सैर करने वालों के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट चस्पा हो गई। गंधा घूमते घूमते अक्सर कह उठते थे, शिट, कोई जगह भी नहीं बची हमारे लिए, कहकर मुंह बना लेते। एक दिन घूमते हुए उन्होंने शशिकांत सिंह से कहा, मंत्री जी के यहाँ तो आपका आना जाना है ना शशिकांत जी? शशिकांत जी ने कहा, हाँ, पर क्यों पूछ रहे हैं? वह भी टहल रहे थे। तो ऐसा कीजिए, उनसे कहिए कि इन लड़कों का यहाँ खेलना बंद करवाएं, ताकि हम साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। और भाई ऐसे भी उनके आलीशान बंगले के पास ऐसा हुजूम क्या अच्छा लगता है? शशिकांत ना जाने क्या सोचते हुए कुछ पलों तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, एक बार मैं ये बात उनके कान पर डाल देता हूँ, फिर उनकी समझ में जैसा आएगा वे वैसा करेंगे। गंधा ने एकदम घिंघिया कर कहा, हाँ भाई, आप इतना कह देना तो काम हो जाएगा, ये मैदान साफ हो जाएगा और हमारा मोहल्ला भी बिगड़ने से बच जाएगा, आखिर हमारे भी बच्चे हैं। मंत्री जी को सुबह सुबह टहलने की आदत थी और वे भी उसी मैदान में टहलते थे अपने लाव लश्कर के साथ। कई लोग उनके आगे पीछे रहते, उसी समय बहुत सारी इधर उधर की बातें होती। वे भी इस बात को देख रहे थे कि उनके बंगले के पास ये फटेहाल बच्चे भाग दौड़ करते रहते हैं, पर यह तो साक्षात जनता थी, इसके विरुद्ध जाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। सोच रहे थे कि कोई बहाना मिले तो कुछ करें। एक दिन वे टहल रहे थे, आगे आगे मंत्री जी, उनके अगल बगल दो बंदूकधारी और साथ में उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कई लोग। एक भीड़ ही चल रही थी। शशिकांत ने दूर से ही हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता के साथ सिर झुकाकर अभिवादन किया और उनकी मंडली में चलने लगा। वे किसी से कुछ कह रहे थे, जब चुप हुए तो शशिकांत ने कहा, सर जी, आजकल इस मैदान में दिन भर हल्ला गुल्ला होता रहता है और गंदगी बिखरी रहती है। हाँ, सो तो है, वे कामगार बस्ती के लड़के चले आते हैं और लगते हैं क्रिकेट खेलने। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया, मैंने कहा कि देखो मंत्री जी के बंगले के सामने मत हल्ला करो, पर वे माने तब ना। अच्छा, आपने उन्हें मना किया था? हाँ सर जी। मंत्री जी भीतर से प्रफुल्लित हुए कि बच्चों को हटाने का उपाय खुद ही निकल आया। शशिकांत ने फिर कहा, सर जी, इस मैदान को एक खूबसूरत पार्क बनवा दीजिए, इससे पूरी शांति हो जाएगी और पर्यावरण भी साफ सुथरा हो जाएगा, सो अलग। यह सुनकर मंत्री जी बोले, शशिकांत जी, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था, मैं इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाता हूँ, पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मुश्किल से एक महीना बीता होगा कि एक दिन उस मैदान में कई लोग आ गए, वहाँ खेलते हुए बच्चों को वहाँ से हटने के लिए कहा। बच्चे मायूस होकर एक ओर खड़े हो गए और सहमे सहमे देखने लगे कि अब यहाँ क्या होने जा रहा है। काम शुरू हो गया, कुछ लोग सफाई करने लगे, चारों ओर फेसिंग की जाने लगी। कुछ दिनों के बाद एक हेड माली अपने साथ लुभावनी तस्वीरें वाली बागवानी और अंग्रेजी किताब लेकर वहाँ चला आया। उसी के निर्देशन में कई लोग क्यारियाँ बनाने लगे। बच्चे अभी भी आते गुमसुम होकर देखते रहते, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ भी पूछने की। उनका प्यारा मैदान एक पार्क बनने की प्रक्रिया में था। वे रोज आते और देखकर चले जाते। पुरानी घास हटाकर विदेशी घास रोपी गई, क्यारियाँ बन गईं, तो उनमें फूलों के नन्हे नन्हे पौधे लगा दिए गए। उसके बाद रोज कई कई माली फूलों को सींचते और गोड़ते हुए दिखाई देने लगे। फिर एक दिन एक बैनर भी लगा दिया गया, नंदन पार्क। गाथा में इस कहानी को आप सुन रहे थे विनीता श्रीवास्तव के द्वारा। धन्यवाद। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया विनीता श्रीवास्तव ने। गाथा में अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी नंदन पार्क। इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था विनीता श्रीवास्तव ने।